レクシナ、ハレクシ
ナ。オーム・ナモ・バガバテ・ワスデヴァヤ。भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय देवर्षिर्पितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयं प्रतिजग्मुः स्वदिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः देवर्षिर्पितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयं प्रतिजग्मुः स्वदिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः देवर्षिर्पितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयं प्रतिजग्मुः स्वदिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः
देव
ऋषि
परमसाधु
पितृ
पितृलोक्यवासी
भूतानि
तथा अन्य जीवात्माएं दैत्याः देव अनुगाह देवताओं के नियमों का पालन करने वाले अन्य लोगों के वासी स्वयं स्वतंत्र रूप से इंद्र की अनुमति के बिना प्रतिजग्मुः वापस चलेंगे स्वदिष्ण्यानि अपने अपने लोगों तथा आवासों को ब्रह्मा श्री ब्रह्मा ईश श्री शिव इंद्र आदय तथा इंद्र आदि देवता ततः तत्पश्चात अनुवाद कार्य शिवपार्थी तत्पश्चात सभी देवता परम साधु पुरुष पितृलोक तथा भूलोक के सभी वासी असुर देवता के अनुचर तथा श्री ब्रह्मा शिव तथा इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ बोले नहीं तात्पर्य इस प्रसंग में श्री कृष्ण ठाकुर की व्याख्या है ब्रह्मो शेन्द्रालय ఇంద్రస్య స్వగమనం నోపపద్యతే ధృతపదక్షణ బ్రహ్మహత్యోప ఉపద్రవ ప్రాప్తే తస్మాత్ తదచిత్తేన మానసరోవరారారభ్య ప్రవర్తిత అశ్వమేధ పరత ఇది వ్యాఖ్యేన.
वध किया वो ब्रह्म हत्या हो गया, महा अपराध हो गया. इसके कारण पाप स्त्री उसके पीछे पड़ी, एक बूढ़ी जिसके मुंह से खून निकल रही थी और उसको ट्यूबरक्लोसिस थी, टीबी थी. ऐसे एक पाप स्त्री उसके पीछे भाग रही थी और वो आसमान में उड़ने लगे, गुफा में जाने लगे, कहीं भी जाए उसके पीछे करने लगी. और अंत में सारे दुनिया में भ्रमण करने के बाद वो एक मानसरोवर नाम के एक तालाब में जो कमल थी, कमल के अंदर वो प्रविष्ट हो गए अंदर, क्योंकि वो कमल के नीचे वो डंडे में, कमल के डंडे में लक्ष्मी जी रहती है जो सब जीवराशियों के माता है. उनके पदकमलों में जाकर इंद्र ने आश्रय ली और इस तरह आश्रय लेने के बाद बहुत बहुत साल उधर इंद्र ने तपस्या की थी और ऐसी तपस्या की उनको वैदिक यज्ञों की जो हविशान प्राप्त होता है सब देवताओं को, उनको प्राप्त नहीं हुआ उधर, इसलिए भूखे मारे तपस्या करने लगे उधर अंदर बैठकर. ऐसे बहुत बहुत साल तपस्या करने के बाद बाहर निकलकर उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ की, उसके बाद वो पाप से मुक्त हो गए. वो इस तरह बताया है संस्कृत में अभी जो बताया गया. श्री ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवगण अपने अपने धामों को चले गए किंतु इंद्र नहीं गए, क्योंकि वृत्रासुर का वध करने के कारण वे विचलित थे. वृत्रासुर वास्तव में ब्राह्मण था. वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मानसरोवर गए. वहां से लौटने के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और तब वे अपने धाम गए. हरे कृष्णा. मैं सर्वप्रथम श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. उन्होंने मुझे मायापुर में जब मैंने मिला, उन्होंने मुझे स्वागत की थी इधर आने के लिए. मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं, रुक्मिणी चरण प्रभु को. युवकों के प्रचार के संबंध में एक बार वो पुणे में आए थे और उनके भक्ति में इतनी तीव्रता और गंभीरता, इसको देखकर मैं भी बहुत प्रभावित हुआ. उनके एक 7 डे कोर्स का रिकॉर्डिंग मुझे मिल गया. मुझे जब मैंने सुना तभी मुझे पता चला कितने बहुत प्रभावशाली प्रवचन प्रभु जी देते हैं उनका 7 डे कोर्स का. तो हम दोनों आपस में हम स्लाइड शो वगैरह हम एक्सचेंज करते थे आपस में, रुक्मिणी कृष्णा प्रभु और साथ साथ आपके मंदिर में मुरली कृष्ण प्रभु विमल प्रसाद प्रभु, इन भक्तों को मैं जानता हूं. मुरली कृष्ण प्रभु जब पहले साल आईटी बीएचयू वाराणसी में पढ़ते थे, वो तो बहुत भाग्यशाली बच्चे थे, क्योंकि उनके माँ बाप पहले से इज्जोलनेस गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त हुई थी उनको, इसलिए बचपन से वो भक्ति करते आए हैं. बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेकर तो जब आईटी बीएचयू वाराणसी में आए थे, हमें उनकी संपर्क मिली और सारे सेंटर को उधर चलाते थे उस समय. और 4 साल उन्होंने प्रचार कार्य में बहुत मदद की और हमारे पुणे के भक्तों के बहुत निकट हो गए. पुणे में एक मुरारी प्रभु हैं जो मुरारी प्रभु से बहुत प्रभु जी निकट हैं. तो मैं भी जाता था आई टी बी एच वाराणसी में, मुझे देखने को मिला कितने अच्छी तरह वो भक्ति खुद भी करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं अनेक लोगों को भक्ति में जोड़ा उन्होंने। इस तरह विमल प्रसाद प्रभु भी इधर आपके मंदिर में जो हैं, उनके अनेक स्लाइड शोज ली थी मैंने, उनसे आइडियाज बहुत ली थी, और इस तरह वो बहुत उदार थे। उनके पास में जो भी मटेरियल्स वगैरह तैयार की थी उन्होंने मेरे साथ बांटा उन्होंने। तो इस तरह आपके मंदिर के अनेक भक्तों को मैं जानता हूं पहले से, लेकिन इधर आने जाने की हमें मौका मिली नहीं थी पहले। इस दौरान गोपाल कृष्ण महाराज जी पुणे में 1995 में उन्होंने इस दौरान राधानाथ महाराज जी को बोले थे कि पुणे मंदिर बहुत सालों से है, 1982 से मंदिर था उधर, अनेक लोग आए गए थे उधर, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज की तीव्र इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की इच्छा है कि पुणे में कुछ प्रचार होना चाहिए। अच्छा, महाराज जी बोले कि मैं अक्सर आ नहीं पाता हूँ, आप एक टीम बनाकर भेजिए। तो 1995 में मैं 1994 में मैंने ज्वाइन की थी बम्बई में, और 1995 में मुझे भेजा गया पुणे। तो 1997 में जब हम अध्यक्ष बने पुणे के, उस समय मेरे गुरु महाराज को मैंने मिला और उनको पूछा कि आपका आदेश क्या है मेरे लिए, बताइए। उन्होंने पहला एक आदेश दी मुझे, उन्होंने बोला कि पुणे के जीबीसी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, वो जो भी तुमको मार्गदर्शन देते हैं उसके अनुसार तुम मंदिर चलाओ, और तुम उनको खुश करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। उस समय से लेकर मुझे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ संपर्क करने के लिए, उनके साथ उनके पास गाइडेंस लेना, मार्गदर्शन लेना, और उनके दिव्य गुणों को देखने के लिए मुझे मौका मिले। वो तो कितने सहिष्णु हैं, कितने दयालु हैं, कितने सब भक्तों को प्रेम करते हैं। साल में 4-5 बार आते हैं महाराज जी पुणे में, 2-3 दिन आते हैं हर बार। हर बार जब आते हैं रात को 12 बज जाता है महाराज जी को, उनके कमरे में लोग इतना भीड़ आता है, और दूसरे दिन सुबह आप आल्टर में देखेंगे महाराज जी को आरती करते हुए ऐसे। तो महाराज जी से मैंने बहुत प्रेरणा ली है, कि उनका महाराज जी का ही प्रेरणा था पुणे में एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। मुझे बड़े मंदिर में उतना रुचि नहीं था, क्योंकि बड़े मंदिर बनाना भी कठिन है, मेंटेन करना और भी कठिन है। इस तरह सोचकर हम कभी कभी गोपाल कृष्ण महाराज जी बोलते थे कि मैं दूसरी बातों के बारे में बात शुरू कर देता था मैं, लेकिन 2003-2004 में दोनों महाराज जी, राजनाथ महाराज गोपक्ष महाराज, दोनों ने मुझे बुलाकर बोला कि पुणे में एक बड़ा मंदिर जरूर बनाना पड़ेगा आपको, कांग्रीगेशन बहुत बढ़ गया है, आपको और भी जरूरत है जरूर। तो हम सोचे कि हम 5-6 करोड़ में एक छोटा मंदिर बना लेंगे, लेकिन गोपक्ष महाराज को बहुत बड़ा विश्वास था। उन्होंने बोला कि तुम मंदिर का काम शुरू करो, भगवान जो है वो लक्ष्मी के नाथ हैं, वो लाखपति करोड़पति अरबपति खरबपति नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, इसलिए तुम शुरू करो, पैसा अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो बोला। तो हम तो 5 करोड़ से बोला कि 10 करोड़ तक हम कर लेंगे पूरा, अभी तो हमारे पुणे का प्रोजेक्ट 40 करोड़ का अभी। तो ये महाराज जी की प्रेरणा है पुणे में। मैं सर्वप्रथम आप सबको मैं विनती करता हूँ कि आप लोग जरूर हमारे मंदिर के उद्घाटन के लिए आइए, 23 फरवरी अगले साल नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर मंदिर का उद्घाटन होने वाला है पुणे में। इस मंदिर के मेन इंस्पिरेशन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी हैं, और साथ साथ राधानाथ स्वामी महाराज भी हैं। और राधानाथ स्वामी महाराज ने बोला कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन में मेरे से भी ज्यादा जानकारी गोपाल कृष्ण महाराज जी को है, उन्होंने भारत में अनेक मंदिर खोला है, उनका अनुभव ज्यादा है, और आप उनसे सब आइडियाज लो, ऐसे महाराज ने बोला था मुझे। तो गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर आकर हमारे कंस्ट्रक्शन टीम को मिलना और फंड रेजिंग टीम को मिलना, उनको आइडियाज देना, बड़े डोनर लोगों को मिलना। पुणे में हमने एक अगरवालों की एक कार्यक्रम की थी, लगभग 5,000 अगरवाल लोग आए थे उसमें। पुणे के कहीं भी अगरवाल हो, कोई भी अपने घर में नहीं था, सब उस कार्यक्रम में था। तो महाराज जी आए थे और एक शाम का पूरा कार्यक्रम दिए, उसके बाद अगरवालों से मिला उन्होंने, और महाराज जी के प्रेरणा से अनेक लोग डोनेशन दी, और ये 40 करोड़ कैसे, अभी 40 करोड़ में 35 करोड़ तक आ गया अभी पैसा। तो कैसे पैसा आया, ये बहुत बड़ा एक चमत्कार जैसे दिख रहा है, कैसे हुआ, एक मैजिक है। लेकिन महाराज की इच्छा से ये पुणे में अच्छा मंदिर बन रहा है, आप लोग जरूर आइए ये उद्घाटन के लिए। और पहले हमारे विमल प्रसाद तो बने, मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ चीजें आपको बताई, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ ईमानदारी से कि मैंने जो भी किताबें तैयार की हैं ये एक कोर्स के रूप में तैयार की गई हैं। और ये कोर्स के रूप में प्रभुपाद जी के दिए हुए उनके तात्पर्यों को ही एक तरीके से प्रदान किया गया है ताकि लोग आसानी से समझे। मैं ज्यादा खुद का लिखता नहीं हूँ, जो भी प्रभुपाद जी ने दिया है उसको कटन पेस्ट करके उसको एक नोट्स ऐसे बनाकर हम कोर्स तैयार करते हैं। हम ऐसे ही प्रचार शुरू की थी विद्यार्थियों की प्रचार 1991-92 में ऐसे ही। तो ये किताबें मैंने जो भी तैयार की है बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी की बात को हम दोहरा रहे हैं उसमें। और हम प्रचार में हमें जो भी सक्सेस प्राप्त होता है ये कृष्ण का ही योजना है, क्योंकि हमारे आचार्यों का इच्छा जो है पृथ्वी त्याचे दिनागर आदि ग्राम, यह इच्छा एक बहुत बड़े तेजी से बहने वाली नदी के बराबर है। उस नदी में किसी को भी आप डालो वो उसको उसका करंट जो बिजली जो है उसको लेके जाता है इसे। इस तरह हम भी जुड़ गए हैं इस संस्था में जुड़कर, हमारी यथाशक्ति कुछ प्रचार की, उससे कुछ युवकों का प्रचार हुआ। लेकिन हमारे अंदर जो भी भगवान प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, स्फूर्ति देते हैं, ये सब आचार्यों का और भगवान का है। और मेरे मत ऐसा है कि हम पुणे में जो कर रहे हैं अभी, एक बार मेरे गुरु महाराज ने बोला कि यू आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ पुणे, ऐसे बोला उन्होंने। अभी पुणे का तो आप लोग प्रचार जो है, पुणे में 50-60 लोग हैं, उसमें कुछ लोगों का हम प्रचार करना शुरू किया है और बहुत कुछ किया जा सकता है भविष्य में। फिर भी ये वैष्णवों का आदत है दूसरे वैष्णवों को गुणगान करना, इसलिए हमारे विमल प्रसाद को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया आप लोगों को। तो मैं सर्वप्रथम हिज होलीनेस भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और दूसरे महान वैष्णवों का भी दंडवत करता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि वो मुझे थोड़ा शक्ति प्रदान करे जिससे मैं थोड़ा भगवान के संबंध में कुछ गुणगान कर सकूं। इस ओनर भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज जी को भी मैं पहले जानता हूं, उन्होंने भी मुझे बुलाकर बिठाकर अनेक योजनाएं उन्होंने बताया युवकों के प्रचार के संबंध में। उनकी इच्छा थी कि सारे भारत के सब युवक धोती कुर्ता पहने, ऐसे उनके पास बहुत से आइडियाज हैं, बहुत क्रांतिकारी आइडियाज हैं महाराज के पास। तो पहले वो जब मखनलाल प्रभु थे उस समय से मैं उनको जानता हूँ और पुणे के युवकों को भी उन्होंने एक प्रवचन दी थी पहले 2004 में, एक नेशनल यूथ फेस्टिवल किया था पुणे में हमने। उसके बाद से महाराज को मैं जानता हूँ और महाराज जी बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत उत्साही हैं, वायस में बड़े हैं लेकिन उनके हृदय में वो योग के बराबर हैं। तो मैं सब वैष्णव को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ पहले। आज की प्रसंग जो चल रहा है ये प्रसंग महत्वपूर्ण है वैष्णवों के लिए। कारण क्या है, जैसे मैंने विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की अनुवाद संस्कृत श्लोक अनुवाद में मैंने बताया आपको, ये पूरे कथा को उन्होंने संक्षिप्त रूप में बताया है। ये कथा में बताते हैं कि इसमें जब बताया है ये वृत्रासुर के संबंध में, वृत्रासुर एक शुद्ध भक्त था, महाभागवत्ता, और साथ साथ वो असुर भी था। ये बहुत आश्चर्य की बात है, किसने पूछा ये वृत्रासुर और प्रहलाद में क्या फर्क है। अभी प्रहलाद जो है वो भी असुर के कुल में जन्मा है लेकिन वो शुद्ध भक्त है। वृत्रासुर भी ऐसा ही है, असुर के कुल में जन्मा है, वो भी शुद्ध भक्त है। लेकिन प्रहलाद ने कभी भी आसुरिक प्रवृत्ति को दिखाया नहीं कभी भी, क्योंकि जन्म लेने के पहले से जब मां के गर्भ में थे उस समय नारद मुनि इनको प्रचार करके उनको एक शुद्ध भक्त बना दिया। प्रहलाद को, है ना। लेकिन वृत्रासुर खास करके सृष्टि किया गया किस लिए, क्योंकि उनके पिताजी त्वष्ट ने इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र की सृष्टि करने की इच्छा हुई उनके हृदय में, क्योंकि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को एक पुजारी बनाकर एक यज्ञ की थी। उस यज्ञ में आहुति डालते समय विश्वरूप ने देवताओं को भी थोड़ा आहुति डाला और असुरों के लिए भी आहुति डाला उन्होंने। उसको देखकर इंद्र उत्तेजित हो गया और अपने क्रोधावेश को उनके सर को काट दिया विश्वरूप के। देखिए इस दुनिया में जब हम क्रोधी होते हैं कभी कभी हम क्या बोलते हैं क्या करते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं क्रोध में। जैसे कामांध होते हैं इस तरह क्रोधांध भी होते हैं। इंद्र भी उत्तेजित हो गया, उसको डर हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया उसको, उसको लगा कि अगर असुर लोगों को भी आहुति डालेगा असुर लोग भी बहुत प्रभावशाली बन जाएंगे तो देवताओं को पराजित कर देंगे, इसलिए विश्वरूप को मार डाला जाए, तुरंत वो मार दिया इंद्र ने। लेकिन बाद में पछताया तो विश्वरूप को मारने के बाद उसके पिताजी त्वष्टा वो बहुत क्रोधित हो गए। इंद्र के लिए, इंद्र और बाकी देवताओं के लिए विश्वरूप ने सेवा की यज्ञ करने की, लेकिन उसको मार डाला इंद्र ने। तो इंद्र को मारने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में इंद्र शत्रो ऐसे उच्चारण करते समय कुछ गलती हो गई, जिसके कारण इंद्र को मारने वाले व्यक्ति को जन्म देना था, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो इंद्र से मारा जाएगा ऐसे व्यक्ति। देखिए संस्कृत में थोड़ा गलती करते हैं तो मतलब पूरा बदल जाता है। कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण है, कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी है, तो पूरा मतलब बदल जाता है ना संस्कृत में, तो सावधानी से बोलना होता है। जैसे ब्रजजन पालन सुरकुल नाशन बोलते हैं, भगवान देवताओं को मारने वाला नहीं है, असुरकुल नाशन है, लेकिन ब्रजजन पालन के साथ आप असुर जोड़ेंगे वो स्वर बनता है ऐसे है। तो उसको संधि विच्छेद करते समय बताना पड़ेगा कि वो असुर कुल नाशन करने वाले हैं। तो इस तरह संस्कृत में कभी कभी उच्चारण में गलती हो जाता है, किस तरह उच्चारण करना चाहिए वो मालूम होना चाहिए, वो गलती कर दिया, इसलिए वो आग से पैदा हुआ कौन, वृत्रासुर, एक बहुत बड़ा असुर पैदा हुआ। इंद्र को मारने वाला था लेकिन इंद्र मारा नहीं गया उसके द्वारा, इसके बदले इंद्र ने उसको मारा अंत में। लेकिन ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में कौन था, वो चित्रकेतु था। चित्रकेतु वो तो जीवन मुक्त हो गया था, उसने नारद मुनि से दीक्षा ली थी और वो शुद्ध हो गया था। आपको मालूम है कि एक बार आसमान आकाश मार्ग में उड़ते समय उन्होंने शिव जी की मजाक उड़ाई, जब वो एक क्लास दे रहे थे अपने बीवी को पास में बिठाकर, और उस समय पार्वती ने उनको एक श्राप दी कि क्योंकि तुम मेरे महान पति महान भक्त भगवान के भक्त हैं शिव जी, उनको तुमने इस तरह निंदा की तुमको एक राक्षस का शरीर प्राप्त हो, ऐसे उन्होंने श्राप दी, इसलिए उनको एक वृत्रासुर का शरीर प्राप्त होता है। अभी वृत्रासुर में दो भावनाएं हैं, एक है क्योंकि त्वष्टा ने उनको अग्नि से तैयार की एक द्वेष भावना के साथ, इस तरह वृत्रासुर के अंदर एक भावना है, हे इंद्र तुमने मेरे भाई विश्वरूप को मार डाला, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, इस तरह बोलते हुए वो आक्रमण करता है इंद्र और देवताओं के ऊपर। और उनमें दूसरी भावना है जो शुद्ध भक्त होने के कारण पूर्व जन्म में यह चित्रकेतु होने के कारण अभी उनमें दिव्य भावना भी है, जिसके कारण वो भगवान को प्रार्थना करता है, अजात पक्षा इव मातरम कघा स्तन्यम यतावत् सतरा क्षुदार्थ प्रियं प्रियेव विशितं विषण मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे भगवान कब ऐसे समय आएगा मैं आपके पदकमलों के आश्रय प्राप्त करूंगा। ये भौतिक दुनिया के बंधन भौतिक दुनिया की आत्माएं कोई भी चाहता नहीं, मैं तो आपके नित्य दास हूं और मैं आपके सान्निध्यता को छोड़कर इस भौतिक दुनिया में एक असुर बनकर भटक रहा हूं। मैं एक बछड़ा जो होता है अपने माता गैया के लिए रोता है, इस तरह मैं आपके लिए रो रहा हूँ। जैसे पक्षियां जो छोटे छोटे पंछियां होते हैं अपने माता के लिए शाम तक इंतजार करते हैं अपने अपने घोंसले में, कब माता आएगी हमको खिलाएगी, इस तरह मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ। और जिस तरह ये एक प्रेयसी अपने प्रेमिका के लिए इंतजार करती है, इस तरह मैं आपके लिए इंतजार करता हूँ। हे भगवान, कब आप आपके दर्शन दोगे, कब आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगा, कब मैं आपके धाम में आ जाऊंगा, इस तरह के दिव्य भावना से वो प्रार्थना करता है वृत्रासुर। ठीक है, प्रहलाद ने भी ऐसे एक प्रार्थना की थी, त्रस्तो स्नेहम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र करनाद्रसताम प्रणीत बद्ध स्वकर्म विरुषत्तम तेंग्रि मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। वो लास्ट लाइन में बोलते हैं प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु, कब आएगा भगवान, मैं आपके धाम में वापस लौट जाऊंगा, आपकी नित्य निरंतर सेवा करूंगा। ये भौतिक दुनिया में सब जीव तरह तरह के बड़े तिमिंगल के बराबर एक दूसरे को ग्रसित कर रहे हैं, एक दूसरे को यात्राएं दे रहे हैं इस दुनिया में, ये स्पर्धा का दुनिया है और सब ईर्ष्यालु होकर लोभी होकर एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं इस दुनिया में। और मैं इस दुनिया के दुखों से मैं पीड़ित नहीं हूं, क्योंकि आपकी दिव्य कथा आपकी गुणगान करने से मेरे मन की भावना इस भौतिक दुनिया की दुखों से ऊपर उठ जाता है, मुझे कुछ चिंता नहीं है। लेकिन इस भौतिक दुनिया में सब लोग नास्तिक हैं, आपके विरुद्ध बातें करते हैं, आपके विरुद्ध काम करते हैं, इसको देखकर मेरा हृदय बहुत पीड़ित होता है। मैं दुखों से पीड़ित नहीं हूं, लेकिन ये बद्ध जीवों के नास्तिक भावना से मैं पीड़ित हूं, ऐसे बोला उन्होंने। इसलिए मैं इस भौतिक दुनिया में रहना नहीं चाहता, वैकुंठ में आकर आपकी नित्य निरंतर सेवा करना चाहता हूं, ऐसे प्रहलाद ने प्रार्थना की थी। ऐसे ही वृत्रासुर भी प्रार्थना करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि वृत्रासुर में महाभागवत का दिव्य गुण 99% वही गुण है उनके अंदर। अब थोड़ा बहुत भावना है, ये देवता लोग के लीडर कौन है, इंद्र है, उन्होंने मेरे भाई को मारा इसलिए इन लोगों को मारना चाहिए, इस तरह उनको मारने के लिए तैयार हो गया वृत्रासुर। उस समय इंद्र को माल में था कैसे इसको मारा जाए, इतने शक्तिशाली हैं, क्योंकि उसके पांव में तो सब लोग चटनी बन रहे हैं, इतने शक्तिशाली है, जो भी आयुध को फेंको वो तो वापिस फेंक रहा है, वो इतना बहुत बड़ा असुर है, उसको कैसे मारा जाए। असुरों को मारना देवता ने सोचा कि हमारा काम है, ताकि इस सारी दुनिया में सब शांति फैलाए। उस समय सब देवता लोग गए विष्णु के पास, विष्णु जी आप ही बताइए कैसे इस असुर को मारा जाए, हमें पता नहीं। विष्णु बोला कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साधारण तरीके से आप मार नहीं पाओगे इसको, आपको चाहिए दधीचि मुनि का हड्डी। तो दधीचि मुनि के पास जाने के लिए इंद्र को थोड़ा संकोच थी पहले, क्योंकि उन्होंने दधीचि को पहले ऐसे एक चेतावनी दी थी कि आप ब्रह्म विद्या किसी को नहीं देना चाहिए, अगर आप ब्रह्म विद्या दोगे तो मार दूंगा तुमको, ऐसे उन्होंने एक चेतावनी दी थी। एक बार अश्विनी कुमार आकर दधीचि से याचना की हमको ब्रह्म विद्या सिखाइए, दधीचि ने बोला कि मैं तो सिखाना तो मेरा काम है, लेकिन आपको सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इंद्र का चेतावनी है मेरे लिए। वो बोले आप चिंता मत करिए, हम तो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हम आपके सर को काट कर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, एक हाया एक घोड़े का सर को रखकर। तो उनसे सीख लिया आप ब्रह्म विद्या वगैरह सीखकर, वो लोग वापस उनके सर को रखकर चले गए। वो लोग आज तक हमारे वैज्ञानिक लोगों को हेड ट्रांसप्लांट कैसे करना मालूम नहीं, सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट किया है अभी तक, वो पुराने जमाने में हेड ट्रांसप्लांट भी किया उन्होंने। अगर हेड ट्रांसप्लांट करने के लिए हम सर को काटेंगे तो मर जाएगा आदमी, जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन वो लोग कर पाए ऐसे। तो इसलिए क्योंकि इंद्र ने उनको चेतावनी दी थी, धमकी दी थी पहले, क्या ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आप याचना कर पाओगे कि आपकी हड्डी दे दो मुझे। फिर भी इंद्र को जाना पड़ा, क्योंकि जान बचाना था, देवताओं को बचाना था, गए वो उनके पास। तो वो बहुत लंबी कथा है, लेकिन उन्होंने देवताओं को देवताओं के द्वारा उपदेश सुना, उन्होंने दान की महिमा के बारे में, अंत में उन्होंने अपने हड्डी देने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने हड्डी भी दिया उनको। तो उनकी हड्डी को लेकर इंद्र ने एक वज्र बनाया। अभी वज्र बनाकर वृत्रासुर को मारने के समय आ गया, अभी लेकिन इंद्र हिचकिचाता है अभी। कारण क्या है, देख रहा है कि मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो महाभागवत है, उसके मन में दिव्य भावनाएं उठ रही हैं भगवान के लिए, वो सब जीवराशियों को समदर्शी होकर देख रहा है, किसी से दुश्मनी नहीं है उसको, लेकिन हम लोगों को मार रहा है वो भी एक कर्तव्य के निष्काम कर्तव्य के स्तर पर वो कर रहा है वो भी। और ऐसे भगवान के महान भक्त को मैं कैसे मार सकूं, ये तो ब्रह्म हत्या हो जाएगा, गोहत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, ये बड़े महापातक पाप माने जाते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। ऐसे इंद्र थोड़ा हिचिचा रहा था। उस समय देवताओं ने एक बहुत बड़ा गलती की, वो सब आकर बोले इंद्र को, हे इंद्र जी, आप तो हमारे नेता हैं, आप संकोच मत करो, मारो इसको, नहीं तो हम लोगों को पूरा मार देगा। तो तभी इंद्र ने बोला कि मैं कैसे मारूं इसको, ये तो महाभागवत है। तभी देवताओं ने बोला, देखो भगवान नारायण जो होते हैं वो इतने कृपालु हैं, भक्तवत्सल हैं, और उनके नामों को जो लेता है, वो नामों को लेने वाला व्यक्ति सब तरह के ब्रह्महत्या से भी बच सकता है। देखो सारे दुनिया के सब जीवराशियों को भी तुम मार डालो, उसके बाद भगवान का एक नाम ले लो, बस तुम सब तरह के पापों से तुम मुक्त हो जाओगे, इस तरह उन्होंने बोला। इसलिए तुम तो सबको नहीं मार रहे हो, एक ही व्यक्ति को मार रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है, आप चिंता मत करो। अगर तुमको शंका हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तुम उनको मार दो, उसके बाद हम एक बहुत बड़े नारायण के लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे, नारायण की संतुष्टि के लिए, और आपके सब पाप कर्म मिट जाएगा, आप चिंता मत करो। इस तरह से देवताओं ने उनको बोला, तो उनके बात में पढ़कर इंद्र ने वृत्रासु को मारा। देखिए कभी कभी ये दुनिया में भी होता है, कुछ कुछ पार्टियों के बीच में कभी लड़ाई होता है, लोग कुछ लोग स्फूर्ति प्रेरणा देते हैं, मारो उसको, छोड़ो मत, सिर्फ पिटाई ही मत करो, मार ही डालो उसको, हम हैं साथ में आपके, ऐसे बोलते हैं। और ये जब मार डालता है सब लोग भाग जाते हैं, उसके बाद बोलेंगे अरे बड़ा आघात पाप हो गया, अभी पुलिस आएगा पकड़ेगा, हम हमारे नाम मत लेना, हमको छोड़ देना, ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसा ही हुआ इंद्र के केस में, देखिए श्लोक में क्या बोला गया है, किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ बोले नहीं, ऐसे बोला गया, क्योंकि उनके मन में इच्छा भी थी वृत्रासुर से हम बचना चाहिए, दूसरी ओर इच्छा भी थी कि उनको मारना भी गलत है, वो भी मालूम था। अभी तो उनको मार डाला उनको, उसके बाद देवता लोग थोड़े डर गए, तो सब अपने अपने धाम चले गए। उसके बाद अभी इंद्र है इधर, अकेला पड़ गया इंद्र। तो ये बहुत महापाप है। इस अध्याय के द्वारा प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में सिखा रहे हैं, ये सातवां अपराध है नाम के विरुद्ध। क्या है सातवां अपराध? नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धि, नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते यमैर्हि शुद्धिः। ऐसे बताते हैं कि ये सातवां पाप दस अपराधों में सातवां अपराध जो है सबसे बहुत घोर अपराध माना जाता है। मैं आपको कारण बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए नाम की महिमा शास्त्र में जरूर बताया है। जैसे एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोग मेरे पीछे दोहराइए, नाम नो ही यावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। ये श्लोक का मतलब है कि कोई भी इस दुनिया में इतना पाप नहीं कर सकता है जितना भगवान के हरि नाम मिटा नहीं सकता है। जैसे ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो इतना मलमूत्र नहीं कर सकता है जो सूर्य चूस नहीं सकता। ऐसा है, सूर्य जो है मलमूत्र को चूसता है लेकिन दूषित नहीं होता वो, और दुनिया के लाखों लोग इतना मलमूत्र करते हैं पूरा चूस लेता है वो, और खुद भी वो शुद्ध रहता है। इस तरह भगवान के हरिनाम भी ऐसे ही शुद्ध है, ऐसे बताया गया है। जितने भी बड़े से बड़े पापी हो, किसी ने अपने गुरु पत्नी को अपहरण किया हो, किसी ने गोहत्या किया हो, किसी ने अपने घर वालों को आग लगाया हो अपने घर के ऊपर, किसी ने विष पिलाया हो किसी को, इस तरह विष्णु दूत बताते हैं यमदूतों को, आप लोगों को मालूम नहीं, इस तरह बड़े महापाप से महापाप किया हुआ व्यक्ति भी अगर भगवान के पास आते हैं और शरण लेते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, उन पापों को वो मिटा सकते हैं, जला सकते हैं, वो सब पाप कर्म फल मिटकर राख बन जाता है। ये भगवान के नामों का शक्ति है, ऐसे बताते हैं विष्णुदूत। ये तो सत्य बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। शास्त्र ऐसे इसके लिए अनेक उदाहरण भी देते हैं। जैसे देखिए, जो हिप्पी लोगों को प्रभुपाद जी ने नाम दी, तो पहले वो गोमांस खाते थे, बाद में वो कांदा लहसुन भी खाते नहीं अभी। पहले वो लोग शराब पीते थे, अभी चाय भी पीते नहीं, है कि नहीं। पहले वो स्त्रीगमन करते थे, अभी वो लोग उसको छोड़कर अनेक लोग सन्यासी बनकर दंडा लेकर सारे दिन में प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं इतना बड़ा परिवर्तन जो आया है लोगों में। कैसे परिवर्तन आया? नाम के द्वारा। प्रभुपाद जी को हमारे विश्वनाथ गोपाक्ष महाराज को मैंने बुलाया था युवकों के कार्यक्रम के लिए मायापुर में। तो उधर उस कार्यक्रम में उन्होंने एक अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि ये धर्म के लोग होते हैं जो तलवार को दिखाकर लोगों को अपने धर्म में ले लेते हैं, दूसरे धर्म के लोग होते हैं जो पैसा दिखाकर लोगों को ले लेते हैं अपने धर्म में। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, प्रभुपाद ने बोला मेरे पास तलवार भी नहीं, पैसा भी नहीं, सिर्फ मेरे पास एक ही उपाय है, क्या है? हरिनाम है बस। अब हरिनाम, हरे कृष्ण मंत्र और कृष्ण में कुछ भिन्न नहीं है, नाम और नामी एक ही व्यक्ति है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि मैं कृष्ण को सामने डाला और कृष्ण से आकर्षित होकर सब जीव अमेरिका में वो नाम लेकर वो अपने सब बुरे आदतों को त्याग कर वो शुद्ध भक्त बन गए। प्रभुपाद ने ऐसे बोला, कृष्ण के द्वारा मैंने आकर्षित किया, प्रभुपाद ने बोला ऐसे। तो ये नाम की महिमा है कि बड़े से बड़े पापी भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, ये भगवत तरंगों से ऊपर उठकर शुद्ध भक्त बनकर भगवत नाम लौट सकता है सिर्फ नाम लेने से। जैसे अजामिल के संबंध में जब यमराज बता रहे थे अपने यमक किंकरों को, उन्होंने बोला, सब लोग दोहराइए सुंदर श्लोक भागवत के, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र काः अजामिलोपितेन मृत्युपाषाद मुच्यत। हे पुत्रो, उनको बोल रहा है अपने यम किंकरों को, नाम उच्चारण महात्म्यम, देखो नाम के उच्चारण का महात्म्य देखो। अजामिल से बड़े पापी व्यक्ति भी वो बताते हैं कि हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपितेन, वो मृत्युपाश से बच गया हो, कैसे? एक ही नाम लिया उसने, नारायण, तो बच गया वो यमपाश से। तो अगर इस तरह ये अजामिल का उपाख्यान बोलने के पहले सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये एक सुंदर श्लोक बताते हैं जिसमें बताते हैं कि सकृन मन कृष्ण पदारविंद यो निवेशित जगुण रागी ऐरिह नते यमं पाश भृतश्च दत्पदान स्वप्ने भी पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। वो बताते हैं स्वप्न में भी मेरे ये भगवान के भक्त मेरे किंकरों को नहीं देखेंगे, ऐसे बताते हैं। अगर कोई कंठी माला पाना है तुलसी का, वो तिलक पाना है, भगवान का नाम का उच्चारण करता है, वो अपने स्वप्न में भी यम किंकरों को नहीं देखेगा, ऐसे बताते हैं। और बताते हैं अपने यम किंकरों को, हे यम किंकरों, आप भगवान के भक्त जिधर रहते हैं उधर निकट मत जाना, कभी भी दूर से देखोगे तो उधर से भाग जाना, अपराध मत करो, अपराध पाप से बहुत बढ़कर है। पाप जो है भौतिक स्तर पर है, अपराध आध्यात्मिक स्तर पर है। इसलिए आप भक्तों के साथ कुछ गलत व्यवहार मत करो, ऐसे बताकर भेजते हैं यमराज अपने किंकरों को। इस तरह नाम का ऐसे महिमा है कि नाम के उच्चारण से भगवान प्रभावित होते हैं। देखिए, भगवान और नाम में भिन्नता नहीं है। नाम को आप पुकारेंगे ना, तुरंत भगवान आ जाते हैं। आप देखेंगे द्रौपदी जी ने हे कृष्णा, हे द्वारकावासिन, हे गोपीजन वल्लभ ऐसे पुकारा था। किधर थी वो उस समय? दिल्ली में थी, हस्तिनापुर में। भगवान किधर थे? वो द्वारका में थे, तो पास, वो तो निकट नहीं है, दूर है। द्वारका किधर है? दिल्ली किधर है? लेकिन जब उन्होंने भगवान का नाम पुकारा तुरंत आ गए कि नहीं? ऐसे हमने गीत सुना, परम पूज्य नवगिंद्र महाराज जी सुना रहे थे, नाम वाले को चिंता रहती नाम न हो बदनाम, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा जट आये घनश्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। समझा आप सगला ने? तो जब पुकारा द्रौपदी ने तुरंत आगे भगवान ऐसे ऐसे ही गजेंद्र ने भी पुकारा था भगवान को नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते करके पुकारा तो नारायण आ गए तुरंत। अनेक देवी देवता तो थे आसमान में लेकिन गजेंद्र ने किसी को संबोधित करके पुकारा नहीं। उन्होंने बोला कि हे परम सत्य परम भगवान जो ये ब्रह्मांड और सृष्टि से परे हो आप जो भी हो आपका नाम भी भूल गया पिछले जन्म में आपका नाम लिया था अभी नाम याद नहीं आ रहा है मैं सिर्फ आपको बुला रहा हूं क्योंकि आप सब देवताओं के भी स्रोत्र हो आप आ जाओ मुझे बचाओ ऐसे उन्होंने बोला। उस समय विष्णु आ गए तुरंत विष्णु आ गए अपने गरुड़ में सवार होकर ऐसे आ गए तो वैकुंठ से आए विष्णु इतने दूर से भगवान के नाम लेने से। जिस तरह हम अपने मोबाइल में किसी का नाम पुकारते हैं किसको बोलते हो अमेरिका में कोई व्यक्ति है तो एक मोबाइल के द्वारा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं है कि नहीं। तो भौतिक संबंध के लिए हमें भौतिक मोबाइल चाहिए अभी आध्यात्मिक संबंध के लिए आध्यात्मिक मोबाइल चाहिए वो क्या है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए जब हम भगवान को पुकारते हैं भगवान सुन रहे हैं शायद हमें हम जानते हो ना जानते हो भगवान देख रहे हैं भगवान सुन रहे हैं जब हम नाम पुकारते हैं। जैसे एक बार सड़क में कुछ विद्यार्थी जा रहे थे उन्होंने देखा कि दूसरे सड़क के दूसरे ओर पर दूसरा विद्यार्थी आ रहा था ऐसे लगा कि मानो वो अपने आप बात कर रहा है खुद ही। तो ये लोगों ने बोला कि क्या है पागल क्या हो वो तो देखता है कि एकदम सज्जन के समान ड्रेस किया है लेकिन अपने आप बात कर रहा है। तो ये लोग क्रॉस करके जाकर देखा उन्होंने तो उनके पास ब्लूटूथ था इधर मालूम है आपको तो ब्लूटूथ में बात कर रहा था वो मोबाइल तो नीचे था ऐसे तो समझ गए। तो मैंने इन विद्यार्थियों को बोला देखो इस तरह जब भगवान के भक्त नाम पुकारते हैं भगवान के वो ब्लू कृष्णा के कांटेक्ट में है हमेशा सर ब्लू कांटेक्ट। तो कुंती महारानी रो रही है अक्रूर के पास हे कृष्णा हे गोविंद आप किधर हो मेरे बच्चों के ऊपर ध्यान रखो ऐसे बोलते हैं। तो प्रभा जी बोल रहे हैं उधर आप कृष्ण के नाम कहीं भी पुकार सकते हो क्योंकि इस दुनिया में ऐसे एक स्थान नहीं है जिधर कृष्ण नहीं है हर अण अण में बसे हैं भगवान और हर जीव के हृदय में बैठे हैं भगवान ऐसे स्थान नहीं है जिधर भगवान के आंख नहीं है कान नहीं है और उनके आंख पलक भी झपकते नहीं भगवान के आंख चक्षुर यस्य न ऋष्यति ऐसे भागवत में बोला गया है भगवान के चक्षु पलक झपकता नहीं ऐसे भगवान देख भी रहे हैं सर्वत श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ऐसे भगवद्गीता में बताते हैं भगवान मैं सुनता हूं हर अण अण में बैठकर मैं लोगों को सुनता हूं। तो जब हम नाम पुकारते हैं भगवान सुन रहे हैं भगवान देख रहे हैं और भगवान कृपालु हैं सुमुखम सुहृदम सुलभम सुखदम ऐसे सुप्रभातम में एक श्लोक आता है सुमुखम का मतलब भगवान का चेहरा बहुत सुंदर है और सुखदम सुख प्रदान करने वाले हैं सुलभम बहुत आसानी से भगवान प्राप्त होते हैं। इस तरह बताते हैं कि जैसे हाथी जो होता है उसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते हैं अपने आप लेकिन जब हाथी झुकता है तभी हम चढ़ पाएंगे ऊपर। इस तरह भगवान भी क्या करते हैं झुककर अपने भक्तों को अपने कंधे पर लेते हैं भगवान ऐसे भक्तों इधर भक्तों को प्रेम करते हैं भगवान। तो भगवान के कृपालु भगवान की कृपा भगवान की वात्सल्यता इसके बारे में शास्त्र में बहुत वर्णन है और शास्त्र बताते हैं कि इस दुनिया में हो सकता है कि कोई देखने में कुरूप व्यक्ति हो शायद लोग उसको पसंद नहीं करेंगे लेकिन भगवान सब जीवों को पसंद करते हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दी सनातन गोस्वामी को हालांकि उनके शरीर में अनेक फोड़े थे और पानी निकल रहा था उसमें फिर भी उन्होंने आलिंगन दिया तभी भक्तों ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं परम भगवान है। कारण क्या है इस दुनिया में अगर किसी के शरीर में फोड़े हो और पानी निकल रहा है तो कौन आलिंगन करेगा क्योंकि भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जो सब जीवों को पसंद करते हैं प्रेम करते हैं और हमारे सबसे निकट व्यक्ति हैं। लेकिन मित्र का मतलब है कोई समाज में हमें मित्र हो सकता है जो बंधु बोलते हैं जो हमारे नाता रिश्ता है लेकिन भगवान का नाम बंधु भी नहीं मित्र भी नहीं क्या है सुहृत है। सुहृत का मतलब है हमारे हृदय के बहुत निकट हैं हृदय में बैठे हैं और हमको पूर्ण तरीके से जानते हैं भगवान इसलिए वो परम कृपालु हैं, वो कुछ भी आपसे मांगते नहीं, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। वो आपकी जाति पाति देखते नहीं है, आपकी विद्या कितना है वो देखते नहीं है, आपके बल कितना है देखते नहीं, आपके पास क्या भौतिक योग्यता है वो देखते नहीं है। ये की देखते हैं कि प्रामाणिकता, नेकता, ईमानदारी, वो ही देखते हैं। अगर कोई भगवान का नाम लेते हैं और सिर्फ ऐसे याचना करते हैं कि हे भगवान तबा अस्मि, मैं आपका हूं, मैं इस भटक गया हूं इस दुनिया में, मुझे शास्त्र मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपके बारे में भी ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप परम कृपालु हो, अति दयालु हो, आप भक्तवत्सल हो, आप मुझे स्वीकारो, आप मार्गदर्शन दो मुझे। ऐसे अगर कोई प्रार्थना करेगा भगवान को, भगवान उसको मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कोई सड़क में जा रहा है तो तुरंत भगवान उसके हृदय में खड़े हैं, बोलते हैं देखो सड़क के दूसरी ओर देखो, एक भक्त किताब बेच रहा है, उसके पास जाकर एक किताब ले लो, तुम्हारे लिए भलाई होगा। तो जाकर खरीदता है किताब, घर में जाकर पढ़ता है, बाद में मंदिर में आता है, उसका अच्छा लगा तो भगवान एक भक्त को बोलते हैं मंदिर में, हे देखो नया नया आदमी आया है, तो वो मेरा ये भगवान के सामने पढ़ा है उसने, इसलिए उसको थोड़ा प्रचार करो, और वो मेरा ही बच्चा है, भटक गया बच्चा है, तो उसको प्रचार करके मेरे पास लाओ। ऐसे भगवान क्या किसको प्रेरणा देते हैं, एक भक्त को प्रेरणा देते हैं। तो भक्त कभी रूम में भी बैठा रहता है, भगवान उसको रूम से बाहर लेके आते हैं, उसको लेके आकर एक व्यक्ति से जोड़ते हैं, तो जाता है उसको आकर बिठाकर प्रसाद देकर खिलाकर उसको प्रचार करता है, तो भक्त बन जाता है व्यक्ति। इस तरह भगवान बताते हैं, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, मैं जो भी जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है, और ऐसे जीव के हृदय में जो अज्ञानता है, अंधकारी रूपी अज्ञानता है, उसको मिटाकर मैं ज्ञान दीप जलाता हूँ और उनको मेरे पास निकट लेके आता हूँ। ऐसे भगवान बताते हैं, ये भगवान की अनुकंपा है, तेषाम एवा अनुकंपार्थम, अनुकंपा बोलते हैं। देखिए कंप का मतलब है कांपना, क्या कांपना, दूसरों के दुखों को देखकर कांपना। अनुकंपा का मतलब है दूसरे के दुखों को मिटाने के लिए काम करना, वो अनुकंपा है। तो भगवान के हृदय में भी ऐसी अनुकंपा है, ये बात हमें समझना आवश्यक है। इसलिए भगवान नाम के रूप में आते हैं, खुद ही आते हैं नाम के रूप में आकर, गोलोके प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मे लोके ने। वो बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, भगवान के नाम किधर से आता है, हाँ गोलोक से आता है, गोलोक से इधर आकर हमारे जिह्वा में नाचता है, हमारे कान में प्रवेश करता है, कर्ण प्रविष्ट रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, हमारे स्वरूप को जागृत करता है, हमारे हृदय में इच्छा पैदा करता है कि मैं पाप कर्मों को त्याग दूं और भगवान के आश्रय लूं और भगवद्धाम वापस लौट जाऊं और दूसरी जनों के लिए भलाई करूं और निस्वार्थ हो जाओ और भौतिक इंद्रिय तर्पण को त्याग दो। इस तरह की इच्छाएं पैदा करता है भगवान के नाम, और ऐसे नाम का हमें आश्रय लेना चाहिए और कभी भी ऐसे नाम को हमें नकारना नहीं चाहिए। और ऐसे नाम जब हमें प्राप्त होता है, उस नाम के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए वो शास्त्र बताते हैं। हरिनाम चिंतामणि में ऐसा बताया जाता है कि 10 नाम अपराधों को हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्या है 10 नाम अपराध, और उसमें 7वां अपराध खास करके नाम न बला जैसे कि पाप बुद्धि, वो जानना आवश्यक है। वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो मैं उदाहरण देता हूं आपको। अगर हमारे मुरली कृष्ण प्रभु एक मोबाइल लेके आते हैं मेरे पास, बोलते हैं राजेश प्रभु आपका एक फोन आया है पुणे से, ठीक है हम बात करते हैं, और भूल से हमने मोबाइल अपने पॉकेट में रख लिया और हम चले गए मंदिर से, और पुणे जाने के बाद पता चला कि मुरली कृष्ण प्रभु का मोबाइल हमारे पास है, तो हम फोन करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी सॉरी हम भूल से लेके गए, आपका मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, हम भूल गए, तो बुरा मानेंगे, वो बुरा मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे ठीक है प्रभु जी भूल से लेके गए, नो प्रॉब्लम, ठीक है प्रभु जी आप भेज दीजिए किसी भक्त से, भेज देते हैं हम वापस। इसके विरुद्ध जरा सोचिए, कोई व्यक्ति है बाहर घूमने वाला व्यक्ति, वो देखता है भक्त लोग तिलक पहनते हैं, वो जाकर बोलता है मुझे भी एक तिलक पहना दो, ठीक है तिलक पहना, मुझे भी एक धोती कुर्ता पहना दो, वही पहन लेता है और अंदर आ जाता है, 10 भक्तों का मोबाइल का चोरी करता है, अपने पॉकेट में रख लेता है और चला जाता है। अगर वो पकड़ा जाता है तो लोग छोड़ेंगे उसको, हड्डी पसली कर देंगे ना, है ना, क्योंकि वो जान बूझ कर पाप करता है। वो समझा ना आपने, देखिए अनजाने से होने वाले पाप जो है जरूर भगवान हमें माफ कर देते हैं, अनजाने से जो होता है। देखिए इस भौतिक दुनिया में माता पिता भी अपने बच्चों को माफ करते हैं कि नहीं, अगर कुछ गलती करते हैं कभी तो प्रेम से थोड़ा लाफा देते हैं लेकिन माफ कर देते हैं वो। देखिए माँ बाप लाफा देने में और पुलिस बेल्ट निकालकर हड्डी पसली करने में बहुत फर्क है कि नहीं। माँ बाप प्रेम से मारते हैं, बच्चे को मारना उनका उद्देश्य नहीं है, बच्चे को सुधारना उनका इच्छा है, ठीक है नहीं। इसलिए भगवान भी बताते हैं अपिचेत सुधराचारो बताते माँ अनन्य पाप, वो बोलते हैं कि भगवान बताते हैं मेरे भक्त जो है थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं, अनजाने से करते हैं तो मैं माफ कर देता हूँ, भक्त में भक्त मानता हूँ उनको भी, ऐसे भगवान बताते हैं। जैसे भरत महाराज ने कुछ गलती की, उनको एक हिरण का शरीर मिला लेकिन हिरण के शरीर में भी भगवान का स्मरण था उनको, तो अगले जन्म में जड़ा भरत बनकर एकदम गंभीर बन गए भक्ति में, तो भगवान ने उनको एक तोड़ा लाफा दिया उनको लाइन में लाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जान बुझ कर पाप करता है वो बड़ा पाप माना जाता है, वो महान, वही सातवां अपराध है। देखिए भगवान के नामों का सहायता लेकर कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे मंदिर में एक भक्त आया था, ऐसे ही एक व्यक्ति आया था, तो बोला कि हमको तिलक पाना दो, मुझे भी इच्छा है, आप लोग तिलक पाने बहुत सुंदर दिखते हो, मुझे भी तिलक पाने की इच्छा है। ठीक है, हमने पाना दिया उनको। तो दोपहर को हम मार्केट में गए थे, वो देखा आपोसिट चरी में आ रहा है, वो सिगरेट पी रहा था, वो माथे पर तिलक और सिगरेट हाथ में। तुरंत में रोड क्रॉस करके गया, हाथ पकड़ा उसको, बोला कि तुरंत मैं निकाल दूंगा उसको, आपका तिलक तुरंत तिलक निकाल दिया। बोले प्रभु जी इतना क्यों आप क्रोधित हैं, बोला। तो मैंने बोला अरे तिलक पहनकर पाप मत करो, अच्छा नहीं है, पाप करना है तो कर लो लेकिन तिलक मत पहनकर मत करो, तिलक पहनकर और कंटीमाला पहनकर दीक्षा लेकर इस तरह पाप कर्मों में लगना बहुत बड़ा बहुत बुरा है। जैसे इस्कॉन के एक गुरु ने एक व्यक्ति को दीक्षा दी थी, तो दीक्षा के पहले वो मांस भी खाता था, मांस भी बेचता था, वो उसका होटल था, होटल का काम था, तो वो मांस बनाकर बेचता था। और दीक्षा देते समय गुरु ने बोला कि देखो तुम्हें मांस बेचना पूर्ण तरीके से बंद करना चाहिए। वो मान लिया, वो ठीक है, वो तो भक्त बन गया इसलिए उनको दीक्षा दी। तो 4-5 साल होने के बाद उनके बीबी और उनके नाता रिश्ता लोगों ने बोला कि देखो तुम पहले इतना कमाते थे, अभी इतना कम कमाते हो, तो पहले तो महीने में 1 लाख कमाते थे, अभी तुमको 20,000 मिलता है, क्या है। वो तो 20,000 में परिवार चलाना उनको कठिन नहीं था, चला सकता था वो, फिर भी उनके नाता रिश्ता वो लोगों ने उनको लोभ पैदा किया उनके हृदय में, तो वापिस वो शुरू कर दिया एरोप्लेन के लोगों को सप्लाई करना, मांस सप्लाई करना। तो उनके गुरु ने बुलाकर बोला देखो ये 7वां अपराध है, क्योंकि अभी कंटे वाला पाने हो, नाम जपते हो, इस तरह मांस बेचना। नहीं महाराज, मैं मांस छूता भी नहीं, मैं सिर्फ मैं लोगों के द्वारा करवाता हूँ और बेच देता हूँ। महाराज ने बोला नहीं, देखो 6 लोगों को पाप प्राप्त होता है, जो मांस काटता है, खरीदता है, बेचता है, खाता है, सब लोगों को करना नहीं चाहिए। तो इस तरह जान बुझ कर पाप करना जो है बड़ा पाप है, वो 7वां अपराध है। अगर हमें मालूम है कि ये पाप है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो नाम कर रहा हूँ, हर दिन इतना नाम कर रहा हूँ, कॉम्पनसेट हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये बड़ा पाप है। तो इंद्र ने ऐसा पाप क्या किया, इंद्र को मालूम था कि यह महाभागवत भक्त है, उसको मारना नहीं था उसको, लेकिन ये देवताओं ने बहुत बड़ा गलती की, उनको बोला कि देखो इसको मार दो और हम भगवान नारायण का नाम जपेंगे, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह बोला उन्होंने। तो इस तरह जानबूझकर उन्होंने मारा वृत्रासुर को, इसके कारण पाप स्त्री जब उनके पीछे की भागने लगी तो भागा भागा इधर उधर, कहीं भी जा नहीं पाया, बच नहीं पाया। अंत में वो मानसरोवर में एक कमल के दंडी के अंदर प्रवेश किया। कारण क्या है, देखिए लक्ष्मी जी जो है वो सारे दुनिया की माता है। ईशानाम जगतोस्य वेंकटपतेर विष्णु पराम प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तक्षांति संवर्धिनी పద్మాలంకృత పాణి పల్లవ యుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం. లక్ష్మికి సమయం బతాయా కి ఈశానాం జగతో అస్య వెంకటపతి విష్ణు పరాం ప్రేసిం. ఏ సారే దునియా కే మాలిక్ కౌన్ హై? వెంకట్ హై. వెంక మతలబ్ హై దుఃఖ్, కట్ కా మతలబ్ హై కట్ కర్నా, కాట్నా. వెంకట్ కా మతలబ్ హై దుఃఖోం కో కాట్నే వాలే. ఆర్ ఉన్కే ప్రేసిం కౌన్ హై? ఉన్కే పరాం ప్రేసిం వో లక్ష్మీజీ హై. ఆర్ లక్ష్మీజీ బహుత్ అతి కృపాలు పరమ దయాలు హై వో. తద్ వక్షస్థల నిత్యవాస రసికా, వో భగవాన్ విష్ణుకే నారాయణకే వక్షస్థల మే ఏక్ సోనే కా ఏక్ బాల్ హై. వో లక్ష్మీ కస్తీ వచ్చిన్ హై, వహీ హై, వో రహతీ హై ఉదర్ హృదయ మే. కభీ బాహర్ ఆకర్ భగవాన్ కీ సేవా కర్తే, పదకమలం మే మసాజ్ కర్తే ఐసే. తద్ వక్షస్థల నిత్యవాస రసికా తద్ శాంతి సంవర్ధిని, భగవాన్ కో ఆనంద్ దేనే వాలి హై. ఔర్ భగవాన్ కే హృదయ మే రహని కే కారణ్ భగవాన్ కే హృదయ మే భీ వో అనుకంప కో పైదా కర్తీ హై లక్ష్మీ. లక్ష్మీ ఇతనే దయాలు హై కి భగవాన్ కే హృదయ మే హోనే కే కారణ్ ఉన్కే హృదయ కీ కోమలతా కో బడా దియా ఉన్హోనే, ఐసే బోలా హై లక్ష్మీ కే బారే మే. ఐసా హై జైసే ఆప్ కిసీ కో భీ పూచియే, ఘర్ మే మాతా పితా దోనో మే మాతా జ్యాదా కృపాలు హోతీ హై. జైసే హమారే ఘర్ మే హమారే పితాజీ కే పాస్ ఏక్ బడా రూలర్ థా, ఇతనా లంబా, వో బీరో మే రఖతే థే, ఇస్తమాల్ నహీ కర్తే థే. అగర్ మే బహుత్ మే శరారతి కర్తా థా తో ఉస్కో నికాల్ దేతే బాహర్, కమ్ సే కమ్ దికానే కే లియే. తో ఏక్ దిన్ ఐసే మే మేరే పితాజీ నే రూలర్ నికాలా, తుమ్ భాగ్ గయా మే బాహర్, ఉన్హోనే లోగోన్ కో భేజా, బులా కర్ లేకే ఆవో ఉస్కో ఇధర్. తో మే ఘర్ మే జబ్ అందర్ ప్రవేశ్ కియా, మే సీధా భాగ్ గయా కిచన్ కే అందర్, ఔర్ మాతా కే సారీ కే పీచే చుప్ గయా. మాతా కో బోలా కి తుమ్ ఆగే జావో, మే పీచే ఆఊంగా. తో మాతా ఆగే జాకర్ మేరే పితాజీ కో శాంత్ కరా దియా ఉన్హోనే, తో అందర్ రూలర్ అందర్ రఖ్ దియా బ్యూరో కే అందర్ ఉన్హోనే. ఐసే హీ లక్ష్మీ జీ భీ క్యా కర్తీ హై, అగర్ కోయి జీవ్ గలత్ కర్ దియా హై కుచ్, తో భగవాన్ కో పిటిషన్ డాల్తీ హై, బోల్తీ హై కి ఠీక్ హై, ఇస్కో మాఫ్ కర్ దో, ఇస్కో యే తో బచ్చా హై, గలతీ కర్ దియా, మాఫ్ కర్ దో, నహీ తో విష్ణు నహీ తో కృష్ణ ఉన్కో వో జబ్ ఉత్తేజిత్ హో జాతే హై, హమ్ కిస్కే పాస్ దౌడే, మా కే పాస్ దౌడనా పడేగా. ఇస్లియే బతాతే హై తక్షాంతి సంవర్ధిని పద్మా అలంకృత పాణి పల్లవ, ఉన్కే హాత్ మే లక్ష్మీ జీ కే హాత్ మే ఏక్ కమల్ హై, ఔర్ కమల్ కే ఆసన్ మే బైఠీ హై. వాత్సల్యాది గుణ ఉజ్వలాం భగవతి, ఉన్కే అందర్ వాత్సల్య గుణ హై, కిస్కే లియే? జీవం కే లియే. ఇస్లియే వాత్సల్య ఆది కా మతలబ్ ఉన్కే అందర్ అనేక గుణ హై, ఉస్మే ప్రథమ ఉజ్వల గుణ క్యా హై? వాత్సల్య గుణ హై జీవం కే లియే, క్యోంకి వహీ జీవం కో లగాతీ హై భగవాన్ కీ సేవా మే, హై నా? మహాత్మానస్ మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితం, ఇస్ లగాతీ హై. వందే జగన్ మాతరా, ఓ జగన్ మాతా హై, ఇస్లియే ఇంద్ర నే ఉన్కీ ఆశ్రయ లీ, బోలా కి మాతా మేనే బహుత్ బడా గలతీ కర్ దీ, ఇతనా బడా గలతీ కర్ దీ, విష్ణు భీ ఛోడేంగే నహీ ముజే, సాత్వా అపరాధ కర్ దీ మేనే, ఆప్ బచావో పతా నహీ, జో భీ తపస్యా కర్నా హో మే తపస్యా కర్నే కే లియే తయార్ హూం, లేకిన్ ఆప్ మేరా రికమెండేషన్ దో విష్ణు కో, తాకి వో మారేంగే నహీ ముజే, ఇస్ తరహ జాకర్ శరణ లియా ఉన్హోనే. తో ఇస్కే బాద్ దేఖియే, హమ్ జబ్ పాపమయ జీవన్ కో ఛోడ్ కర్ శుద్ధ జీవన్ పర్ హమ్ ఆతే హై, ఇస్కే బీచ్ మే హీ హమే బహుత్ సతర్క్ రహనా చాహియే, క్యోంకి పాప్ హమ్ లోగోనే పాపమయ జీవన్ ఛోడా హై, అభి దివ్య జీవన్ ఇధర్ హై, అభి హమ్ లోగ్ బీచ్ మే హై, అగర్ బీచ్ మే అగర్ హమ్ పాప్ కరేంగే తో వాపస్ హమ్ పాపమయ జీవన్ మే గిర్ జాయేంగే, తో నీచే సే ఊపర్ జబ్ హమ్ ఉఠతే హై, అగర్ పాప్ కరేంగే తో వాపస్ గిర్ జాతే హై హమ్ నీచే. ఇస్లియే హమారే పాప్ కర్నే కీ ప్రవృత్తి కో త్యాగ్ కర్, భగవాన్ కే భక్తోం కే దివ్య భక్తోం కే సంగ మే రహ్ కర్ హమే హమారే చేతనా కో ఊపర్ ఉఠానా చాహియే, ఔర్ 10 నామ అపరాధం కో సమజ్ కర్ ఉన్కో కభీ వాపస్ నహీ కర్నా చాహియే, జితనా హమ్ అపరాధం కో ఛోడ్ దేతే హై ఉతనా హమారే నామం మే ఏకాగ్రతా ఆతా హై, ఔర్ నామ బహుత్ బలశాలి హోతా హై, ఔర్ నామ కా పూరా లాభ హమ్ ఉఠా పాయేంగే. ఇస్లియే భాగవత్ కే అలగ్ అలగ్ దృష్టాంత కే ద్వారా హమే సమజాయా జాతా హై కి ఇస్ తరహ కే అపరాధ జో ఇధర్ జో బతాయా హై నామ సాత్వా అపరాధ కే సంబంధ మే హమే ఇసే బచకర్ రహనా చాహియే, జాన్ బుజ్ర కభీ హమ్ పాప నా కరే, వహీ ఇస్కా శిక్షా హై, ఔర్ ఆగే జాకర్ ఆప్ లోగ్ ఇస్కే బారే మే ఔర్ విస్తరిత రూప్ సే ఆప్ పడేంగే. ఔర్ శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ బహుత్ జోర్ దేతే థే ఇస్కే ఊపర్, బోల్తే థే ప్రభుపాద్ జీ దేఖో పతిత్ సే పతిత్ లోగోన్ కో భీ నామ ఉద్ధార్ కర్తా హై, లేకిన్ ఐసే నామ్ కో హమే నామ్ నామ్ కో నకారనా నహీ చాహియే, ఔర్ నామ్ కే సాథ్ దుర్వ్యవహార్ నహీ కర్నా చాహియే హమే, ఐసే నామ్ నామ్ కీ మహిమా కో జాన్నా చాహియే ఔర్ నామ్ కా ఆశ్రయ లేనా చాహియే, ఔర్ జాన్ బుజ్ కర్ హమే पाप कर्म में लगना नहीं चाहिए. इन इंग्लिश वी कॉल इट एज अनप्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन, दैट इज टॉलरेटेड, नॉट प्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन. प्रीमेडिटेटेड का मतलब है जानबूझकर पाप करना. ये सातवां अपराध है, महत्वपूर्ण अपराध. आप लोग आगे पढ़िए, आप लोग और भी समझेंगे इसके संबंध में. प्रभुपाद जी अच्छी तरह तात्पर्य के द्वारा समझाते हैं. प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की गौर भक्त वृंद की. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.
प्रश्न तो प्रश्न पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. धन्यवाद गुरुजी. गुरुजी जैसे कि भगवान कनकन में आपने गजेंद्र की कथा बताई थी, तो ये थोड़ा गजेंद्र की जो कथा बताई थी, तो भगवान एकदम से भी अपीयर हो सकते थे, भगवान के पास अचिंत्य शक्तियां हैं, तो ये भगवान का क्या लीला है कि भगवान गरुड़ के पास गरुड़ के ऊपर सवार होके आ रहे हैं, और तो इसको कैसे समझा जा सकता है?
देखिए आजकल आधुनिक दुनिया के लोग वे बता रहे, पूछ रहे हैं कि भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर क्यों आते हैं, ऐसे अपने आप ही आ सकते हैं ना ऐसे. देखिए आधुनिक दुनिया में आप देखेंगे सब लोग हवाई जहाज यूज करते हैं, वो जिंदा नहीं है, वो मृत पदार्थ है ना, जड़ पदार्थ है. लेकिन वैदिक संस्कृति में आप देखेंगे कोई भी देवी देवता ये मृत एरोप्लेन को यूज नहीं करते, सबके पास वाहन है. गणेश जी का वाहन क्या है? और कार्तिकेय का वाहन क्या है? शिव जी का, और पार्वती जी का, और विष्णु का. इसके पास ऐसे भौतिक पदार्थ से बना हुआ एरोप्लेन है. ब्रह्मा जी का ये क्यों इस तरह का वाहन है? वाहन जो बनते हैं वो भगवान के महान भक्त हैं, और अपने ही भक्त को सेवा देने के लिए वो उनके वाहन के रूप में स्वीकारते हैं. क्योंकि दास जो होता है वो अपने मालिक की सेवा करना चाहता है, इसलिए वो वाहन बनते हैं भगवान के. ऐसा नहीं कि विष्णु वाहन के बिना जा नहीं सकते, वो तो हर अंडर में बसे हैं, कभी भी जा सकते हैं. उनके आदान प्रदान करने के लिए उनको वाहन के रूप में स्वीकारते हैं. ठीक है ना? जैसे अगर आपके गुरु महाराज जी आते हैं और ऊपर के माले से नीचे आते समय आपके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, ऐसे थोड़ा मदद करो, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? अगर बोलेंगे आपकी मदद जरूरत नहीं, हम अपने आप आएंगे, ऐसे आते हैं तो कंधे पर हाथ रखने से आपको और अच्छा लगता है. आपको महाराज जी ने हमारा सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा, हमने सेवा की महाराज जी की. इस तरह भगवान के और दूसरे देवताओं के बीच जो पार्षद होते हैं वाहन बनते हैं, उनको वाहन बनने से उनको आनंद आता है, उनको इसलिए उनको आनंद देने के लिए उनको वाहन के रूप में स्वीकारते हैं भगवान. ऐसे देखा जाए तो कृष्ण सब दूसरे भक्तों के आनंद के लिए करते हैं ऐसे. ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? वन क्वेश्चन एनीबडी? यस. हाँ जोर से बोले. हाँ करेक्ट. देखिए ये पाप और अपराध के बीच में फर्क पूछ रहे हैं. देखिए अगर आप ये कार में जा रहे हैं, अगर बारिश होता है तो बारिश होते समय आप वाइपर लगाते हैं ना, अच्छा करता है, तो आप तो आगे जाते रहेंगे कार में, लेकिन थोड़ा धीमी से जाएंगे, क्योंकि जब बारिश होता है तेजी से हम चला नहीं पाएंगे गाड़ी, क्योंकि बारिश आता है, आप वाइपर को लेकर ये करते रह जाते हैं. लेकिन ऐसे कार में जाते समय किसी दूसरे कार का व्यक्ति है आपको ओवरटेक कर रहा है, अगर आप उसको टोक देते हैं तो क्या ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है? बोलता है दोनों को, दोनों बाजू में कर दो, ऐसे कर देता है कि नहीं? इस तरह हमारे जीवन में भी जो पाप होता है, भौतिक पाप होता है ना, वो बारिश के बराबर है. जब हमारे ये ग्लास के ऊपर आता है, हम पाप कर्म को बिठा कर जा सकते हैं और धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, लेकिन अपराध करते हैं वो दूसरे व्यक्ति के साथ, भक्तों के साथ. जब टुकराते हैं दूसरे भक्तों के साथ तो हमारा एडवांसमेंट अरेस्ट हो जाता है, बंद पड़ जाता है. देखा ना आपने? आप देखेंगे भक्ति के शुरुआत में लोग बहुत बोले बाले होते हैं, एकदम सरल होते हैं, और दो तीन चार पांच छह सात साल होने के बाद क्योंकि भक्तों का अपराध करते हैं, इसके कारण मन बहुत बड़ा पत्थर के समान बन जाता है, वो पिघलता नहीं है। हरिनाम लो, हरिनाम लेने के बाद भी मन पिघलता नहीं। कारण क्या है? अगर हम भक्तों को दुख देते हैं, भक्तों से झगड़ा करते हैं, उसके बाद नाम लेकर हम बैठकर हरे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलेंगे क्या हरे कृष्ण बोलते हो है? तुमने मेरे वो भक्त को दुख दिया, तुमने इनको ऐसे किया वैसा किया, तुम मुझे क्या बुला रहे हो, मैं तो नहीं आऊंगा। ऐसे भगवान भी ये कर देते हैं, हमको नकार देते हैं। इसलिए भगवान के आशय प्राप्त करने के लिए हम देखिए, दस नाम अपराध जो है, हर एक चीज एक एक अपराध है। उदाहरण के लिए द फर्स्ट अफेंस इज वॉट, डोंट अफेंड डिवोटीज। सेकेंड अफेंस इज डोंट अफेंड द लॉर्ड बाई इक्वेटिंग विद डेमिगॉड्स। थर्ड अफेंस इज डोंट अफेंड गुरु। फोर्थ अफेंस इज डोंट अफेंड स्क्रिप्चर्स। फिफ्थ इज डोंट अफेंड द ग्लोरी ऑफ द होली नेम। सिक्स्थ ऑल्सो डोंट अफेंड द होली नेम बाई misinterpretation. Seventh offense is don't abuse the holy name. Eighth offense is don't offend the glory of the holy name by comparing it with mundane name. Similarly, the ninth offense, don't offend the holy name by revealing it to the faithless. The tenth offense is don't offend the holy name by maintaining mental attachment. So all of them, if you see, they are all offending only. All of them. And the 11th offense is inattentiveness. So, those is inattentiveness and offense. Only these two things you have to avoid. Attentively, we have to do it. Dhyan se sunna. And the other thing is, don't do the aparadh mat karna. Bhaktan ko, guru ko, bhagwan ko, shastron ko, naam ko aparadh mat karna. Ye do cheez avoid karenge, to hum, humare naam jap mein bahut aage badh jayenge, bahut jaldi. तो अपराध आध्यात्मिक स्तर पर है। कारण क्या है? ये वक्ता भगवान इस तरह के आध्यात्मिक पदार्थों से संबंधित है, वो इसलिए वो आध्यात्मिक है। He is working in share market also comes under gambling. See, there are two things, shares and debentures. Debentures you can take surely, because debenture means you get a dividend. That's a dividend which you get, fixed amount. बट अगर शेयर मार्केट में अगर आप शेयर लेते हो, वहां 10 रुपया का शेयर है, कल 1 लाख रुपया बन जाता है। और आपका 5 लाख के लिए शेयर है, आपके पास वो 1 रुपया बन जाता है। इस तरह वो एकदम फ्लक्चुएट होता है, जिसके कारण हमारे मन भी हमेशा उसके बारे में चिंता करता है। मैंने एक दुकान में गया था, एक डोनर के दुकान में, उनके सामने एक टेलीविजन था, उसमें कॉन्स्टेंटली बदलता जाता। मैंने पूछा क्या है, वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट का पोजिशन बताता जाता है, वो 24 घंटा ऑन रहता हो। किसी ने देखा है उसको? आपने से किसी ने देखा है? करेंट भाई लाभ 24 देख रहा हो उसको। मैंने बोला ऑलरेडी इतना टेंशन है अंदर, उसको देखकर और भी टेंशन बढ़ जाएगा, है ना? इसलिए टेंशन बढ़ाने वाली चीज हम नहीं करते, अच्छा नहीं है। शांति से जपना पड़ेगा हमें, इसलिए हम शेयर मार्केट में हम प्रवेश नहीं करते। हम शेयर के बदले डिबेंचर ले सकते हैं। अब दूसरा चीज भी है, क्विक मनी विच इज अचीव्ड इज ऑल्सो डेंजरस। अगर किसी के एक साधारण एवरेज आदमी है, अचानक उसके पास लाखों रुपया आ गया, तो गलत चीजों को करना शुरू हो जाता है। वो शराब पीता है, स्त्री गमन करता है, सब करता है। इससे अच्छा है कि नेकता से प्रामाणिकता से कमाओ, थोड़ा बचाव करो उसको, भक्ति में लगे रहो बस। क्या
Knowingly and unknowingly, we commit mistakes and make offenses towards the devotees. So, how could we really work on it? Means, how could we decrease or stop this tendency?
Yeah, Prabhuji बोल रहे हैं कि जान जान बुझ कर नहीं तो अनजाने से पाप होता जाता है हमारे हाथ से, क्या किया जाए? हमें कम से कम जान बुझ कर नहीं करना चाहिए। अनजाने से जो होता है भगवान माफ कर देंगे, जैसे हमने बताया। अगर जान बुझ हो गया तो क्या किया जाए? वो मौस्कलित पादानाम भूमिरे वावलंबनम नाम जाता परादानाम तमेव शरणम प्रभु। एक बच्चा जमीन के ऊपर चल रहा है, भूमि के ऊपर, लेकिन उसको कड़ा होना कैसा मालूम नहीं ठीक तरह से। कड़ा होता है नीचे, भूमि के ऊपर ही गिरता है। भूमि का अवलंबन करते हाथ रखते हुए उधर ही कड़ा होता है, तो भूमि का ही आश्रय लेना पड़ता है उसको। इस तरह अगर हम पाप किया, क्या किया जाए? नामों का ही आश्रय ले और नाम करें। अगर हम 16 माला करते हैं, अगर हमने पाप किया तो 25 माला करें। इस तरह भूमि के ऊपर ही हम गिरते हैं और भूमि का आश्रय लेकर ही हम उठते हैं। भूमि रेवा अवलंबनम नाम जाता पराधानम ना तमेव शरणम प्रभु, नाम का ही आश्रय लेना चाहिए वापस हमें। दूसरा कुछ क्या करेंगे इस दुनिया में, बाकी कुछ जैसे ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं, हम नाम जैसे, नाम सबसे शक्तिशाली है, नाम का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला देयर हैज टू बी रिपेंटेंस एंड रिमोर्स, इसका मतलब है पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। अगर हम गलती करते हैं तो क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और वापस नाम का आश्रय लेना चाहिए। वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं और नाम ज्यादा मात्रा में जप सकते हैं, इससे हम धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। जैसे इंद्र राधा रानी लक्ष्मी की आश्रय ली उसने और धीरे धीरे ऊपर उठ गए, उसके बाद वापस उनके स्थान में पुनर्स्थापित किया गया उनको। शैल प्रपाद की मंत्रा श्रीमद भागवतम की, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण,
दोबारा जोरदार करते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं जो राधे साहब दे रहे हैं। प्रभु जी से जो है हम अनुमोदन करेंगे कि प्रभु जी जो है दोबारा हमारे मंदिर में आए और अपना संग दे इस तरीक से, और बहुत ही हमारे लिए जो है आज आप लोगों ने सब सुना होगा, तो सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है दोबारा जो है हमारे मंदिर में जरूर आगमन करें।
और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के साथ आप लोग अगले साल मंदिर के उद्घाटन के लिए जरूर आइए, ठीक है।